क्या खाएं, क्यों खाएं, कैसे खाएं। 1. शरीर के कायाकल्प का साधन भोजन। 2. भोजन का आध्यात्मिक उद्देश्य। 3. प्राकृतिक आहार। 4. फलों की रोग निवारक शक्तियां। 5. फलों के बीज पौष्टिक खाद्य। 6. तरकारियां अधिक लीजिए। 7. सलाद तैयार करें। 8. दुग्धाहार। 9. अन्नाहार। 10. महान उपकारी जल तत्व। 11. रोग नाशक जल। 12. जल के अमृतों में गुण। 13. दैनिक जीवन में जल का प्रयोग। 14. चमत्कारी विटामिन अभाव एवं प्राप्ति। 15. ये चीजें अधिक न खाएं। 16. अच्छी पाचन शक्ति का रहस्य। 17. आपकी खुराक क्या हो। 18. जीवन रक्षक पदार्थ तथा उनका विवेकपूर्ण उपयोग। 19. अल्पाहार दीर्घायु का रहस्य। 20. भोजन के समय की मन स्थिति। 21. कुदृष्टि से सावधान रहें। 1. शरीर के कायाकल्प का साधन भोजन। आहारस्त्वपि सर्वस्व त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दान तेषा भेदमिमश्रिणु आयु सत्वब्लारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रिस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आहारा सात्विक प्रियो। गीता 17:8. भोजन की उपयोगिता। शरीर की रक्षा पुष्टि और स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व मनुष्य का भोजन है। जैसे कोयले से इंजन चलता है, चाबी से घड़ी चलती है, उसी प्रकार अस्तित्व स्थिर रखने, स्वस्थ रूप में कार्य कर दीर्घ जीवी होने के लिए भोजन की उपयोगिता है। बिना भोजन के मृत्यु अवश्यंभावी है। भोजन पचकर रक्त मांस आदि का रूप प्राप्त कर शरीर के विभिन्न अवयवों को निज कार्य संपन्न करने की शक्ति प्रदान करता है। शरीर के विकास परिवर्धन नित्य प्रति के जीवन की छिजाई घिसाई की क्षतिपूर्ति पौष्टिक भोजन के द्वारा ही संभव हो सकती है। मनुष्य वृद्धावस्था तक में अच्छे भोजन के बल पर पुष्ट स्वस्थ और युवक बना रह सकता है। इसके विपरीत अपूर्ण या असंतुलित भोजन के कारण यौवन में वृद्धावस्था आकूदती है। जैसा भोजन वैसे विचार इस तथ्य में गहरी सत्यता है। साधारणतः लोगों का विचार है कि ब्रह्मचर्य पालन के लिए शुद्ध विचारों सुसंगति स्वाध्याय भजन पूजन इत्यादि में लगे रहना चाहिए। ऐसा कहने वाले प्रायः भोजन और विचारों का जो अन्योन्याश्रित संबंध है उसे भूल जाते हैं। भोजन हमारे संस्कार बनाता है जिसके द्वारा हमारे विचार बनते हैं। यदि भोजन सात्विक है तो मन में उत्पन्न होने वाले विचार सात्विक और पवित्र होंगे। इसके विपरीत उत्तेजक या राजसी भोजन करने वालों के विचार अशुद्ध और विलासी होंगे। जिन जातियों में मांस अंडे मद्य चाय तंबाकू इत्यादि का प्रयोग किया जाता है वे प्रायः विलासी विकारमय गंदे विचारों से परिपूर्ण होते हैं। उनकी कामेंद्रियां उत्तेजक रहती हैं, मन कुकल्पनाओं से परिपूर्ण रहता है, क्षणिक प्रलोभन से अंतर्द्वंद्व से परिपूर्ण हो जाता है। भोजन हमारे स्वभाव रुचि तथा विचारों का निर्माता है। पशु जगत को लीजिए। बैल भैंस घोड़े गधे इत्यादि शारीरिक श्रम करने वाले पशुओं का मुख्य भोजन पात हरी तरकारियां या अनाज रहता है। फलतः वे सहनशील शांत मृदु होते हैं। इसके विपरीत सिंह चीते भेड़िये बिल्ली इत्यादि मांस भक्षी चंचल उग्र क्रोधी उत्तेजक स्वभाव के बन जाते हैं। घास पात तथा मांस के भोजन का यह प्रभाव है। इसी प्रकार उत्तेजक भोजन करने वाले व्यक्ति कामी क्रोधी झगड़ालु अशिष्ट होते हैं। विलासी भोजन करने वाले आलस्य में डूबे रहते हैं, दिन रात में 10-12 घंटे सोकर नष्ट कर देते हैं। सात्विक भोजन करने वाले हल्के चुस्त कर्मों के प्रति रुचि प्रदर्शित करने वाले कम सोने वाले मधुर स्वभाव के होते हैं। उन्हें कामवासना अधिक नहीं सताती। उनके आंतरिक अवयवों में विष विकार एकत्रित नहीं होते। जहां अधिक भोजन करने वाले अजीर्ण सिर दर्द कब्ज सुस्ती से परेशान रहते हैं वहां कम भोजन करने वालों के आंतरिक अवयव शरीर में एकत्रित होने वाले कूड़े कचरे को बाहर फेंकते रहते हैं। विष संचय नहीं हो पाता। भोजन की उपयोगिता स्पष्ट करते हुए एक वैद्य विशारद लिखते हैं, भोजन से शरीर की छीजन जो हर समय होती रहती है दूर होती है। यदि यह छीजन दूर न होगी तो कोश दुर्बल हो जाएंगे और चूंकि शरीर कोशों का समूह है कोश के दुर्बल होने से संपूर्ण शरीर दुर्बल हो जाएगा। कोशों को वे ही पदार्थ मिलने चाहिए जिनकी उन्हें आवश्यकता हो, जैसे गर्मी व स्फूर्ति देने वाले उनको पुष्ट करने और अच्छी हालत में रखने वाले पदार्थ। कोशों के अंशों के टूटने फूटने से शरीर में बहुत से विषैले अमल पदार्थ एकत्रित हो जाते हैं। इनको दूर करने के लिए क्षार बनाने वाले पदार्थ पक्के मीठे फल खट्टे फल नींबू आम चकोतरे अनन्नास रसभरी कच्ची या उचित ढंग से पकाई गई साग सब्जी दूध घी मीठा दही छाछ खाने चाहिए। 2. भोजन का आध्यात्मिक उद्देश्य। भोजन करने का आध्यात्मिक उद्देश्य है। इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण उत्पन्न करने वाले भोजनों की ओर संकेत किया है। जिस व्यक्ति का जैसा भोजन होगा, उसका आचरण भी तदनुकूल होता जाएगा। भोजन से हमारी इंद्रियां और मन संयुक्त हैं। आहार शुद्धो सत्वाशुद्धि सत्वशुद्धो दुर्वा स्मृति स्मृतिलंबे सर्वग्रंथीना विप्रमोक्षा छांदोग्य, अर्थात आहार की शुद्धि से सत्व की शुद्धि होती है, सत्व की शुद्धि से बुद्धि निर्मल और निश्चय बन जाती है, फिर पवित्र व निश्चय बुद्धि से मुक्ति भी सुलभता से प्राप्त होती है। जिन्हें काम, क्रोध, उत्तेजना, चंचलता, निराशा, उद्वेग, घबराहट, शक्तिहीनता या अन्य कोई मनोविकार है, उन्हें उसकी चिकित्सा भोजन द्वारा ही करनी चाहिए। सात्विक भोजन से चित्त निर्मल हो जाता है, बुद्धि में स्फूर्ति रहती है। आध्यात्म जगत में उपवास का अत्यधिक महत्व है। अधिक खाए हुए अन्न पदार्थ को पचाने और उदर को विश्राम देने के लिए हमारे ऋषियों ने उपवास की योजना की है। भोजन में चित्तवृत्तियां लगी रहने से किसी उच्च विषय पर ध्यान एकाग्र नहीं होता। उपवास से काम, क्रोध, रोग आदि फीके पड़ जाते हैं और मन हठात दुष्कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। सात्विक अल्पाहार करने वाले व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग में दृढ़ता से अग्रसर होते हैं। जो अन्न बुद्धिवर्धक हो, वीर्य रक्षक हो, उत्तेजक न हो, कब्ज न करे, उक्त दूषित न करे, सुपाच्य हो, वह सत्वगुण युक्ति आहार है। अध्यात्म जगत में उन्नति करने, पवित्र विचार और अपनी इंद्रियों को वश में रखने, ईश्वरीय तेज उत्पन्न करने वाले अभ्यासियों को सात्विक आहार लेना चाहिए। सात्विक आहार। सात्विक आहार क्या है? जो ताजा, रसयुक्त, हल्का, स्नेह युक्त, पौष्टिक, मधुर और प्रिय हो, उसे सात्विक आहार कहते हैं। जैसे गेहूं, चावल, जौ, साठी, मूंग, अरहर, चना, दूध, घी, चीनी, फल, सेंधा नमक, रतालू, शकरकंद, तरकारियां, शाक इत्यादि। शाकों में घिया, तुरई, खीरा, पालक, मेथी, गाजर का विशेष महत्व है। ये हल्के, सुपाच्य तथा शुभ प्रकृति उत्पन्न करने वाले पदार्थ हैं। फलों में आम, तरबूज, खरबूजा, आलू बुखारा, नारंगी इत्यादि उत्तम हैं। दही भूलोक का अमृत है। सात्विक पुरुष दही, छाछ, मक्खन, पनीर इत्यादि का खूब प्रयोग कर सकते हैं। स्वामी शिवानंद जी के अनुसार हरे ताजे शाक, दूध, घी, बादाम, मक्खन, मिश्री, मीठे संतरे, सेब, अंगूर, केले, अनार, चावल, गेहूं की रोटी, मखाना, सिंघाड़े, काली मिर्च ली जा सकती है। सात्विक आहार से चित्त की एकाग्रता प्राप्त होती है। दही की लस्सी, मिश्री का शरबत, नारंगी, नींबू के रस का प्रयोग सात्विक है। नींबू को खटाई में गिनना भूल है। साधक इसका सफलतापूर्वक प्रयोग कर सकते हैं। इससे पित्त का शमन होता है तथा रक्त शुद्ध होता है। एकादशी के दिन अन्न का परित्याग कर दूध और फलों सेवन करना चाहिए। इससे इच्छा शक्ति बलवती होती है तथा जिह्वा पर नियंत्रण प्राप्त होता है। प्रसिद्ध आत्मवादी डॉक्टर जीरो दुर्गाशंकर नागर की सम्मति इस प्रकार है। आध्यात्मिक पुरुष को अवस्था, प्रकृति, ऋतु तथा रहन सहन के अनुसार विचार कर शीघ्र पचने वाला सात्विक भोजन करना चाहिए। फलाहार सब आहारों में श्रेष्ठ है। संतरे, सेब, केले, अंगूर, चूसने के आम आदि फल उत्तम होते हैं। फलाहार से उतरकर अन्नाहार है। रोटी, मूंग, अरहर की दाल, चावल, शाक, भाजी, दूध, मक्खन, घी आदि का समावेश अन्नाहार में होता है। आटा हाथ का पिसा हुआ चोकर सहित उपयोग में लेना चाहिए। गेहूं और जौ सत्वगुणी अनाज हैं। चने का अधिक उपयोग वायु कारक होता है। कच्चे चने को छिलके सहित भिगोकर नसें फूटने पर खाना बलकारी है। यही बात मूंग के संबंध में भी है। दालों में मूंग, मोठ, अरहर श्रेष्ठ हैं। सिंघाड़े, शकरकंद सत्वगुणी हैं। चावल हितकर अनाज है, जो इसे पच सके अवश्य लें। फलों के रस, बादाम, खीरे के बीज, सौंफ, इलायची, गुलाब के फूलों की ठंडाई मिश्री मिलाकर पीना उत्तम है। गुड़ सर्वोत्कृष्ट मीठा है। गौ दुग्ध सात्विक है। मन को विकृत करने वाला राजसी आहार। कटवमल लवनात्युष्णा तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिन आहारा राजस श्रेष्ठा दुख शोक भयप्रदा गीता 17:9। राजसी आहार का प्रत्यक्ष प्रभाव हमारे मन तथा इंद्रियों पर पड़ता है। मन में कुकल्पनाएं, वासना की उत्तेजना और इंद्रिय लोलुपता उत्पन्न होती है। मनुष्य कामी, क्रोधी, लालची और पापी बन जाता है। रोग, शोक, दुख, दैन्य की अभिवृद्धि होती है। मनुष्य की आयु, तेज, सामर्थ्य और सौभाग्य का तिरोभाव होता है। बुद्धि मलिन होती है। राजसी आहार की सूची देखिए। सब प्रकार के व्यसन जैसे शराब, चाय, काफी, कोको, सोडा, पान, तंबाकू, गांजा, भांग, चरस, अफीम, कोकेन, चिंडू इत्यादि। जो सिगरेट पीते हैं, वे प्रत्यक्ष विषपान किया करते हैं। इससे नशा, भ्रम, सर में चक्कर, खांसी, पित्त, वमन उत्पन्न होता है। खाने का पान, चूना, फंकी, तंबाकू भी घृणित हैं। तेल से तले हुए गरिष्ठ पदार्थ, बाजार में बिकने वाली मिठाइयाँ, रबड़ी, पूरी, कचौड़ियाँ, मालपुआ, तली हुई दालसेव, अधिक मिर्च मसाले वाले नमकीन, उत्तेजक तरकारियाँ, केवल जिह्वा के स्वाद मात्र के लिए तैयार की गई बाजारों चाट पकौड़ी, समोसे, दही बड़े, खस्ता, कचौड़ियाँ, मसालेदार काबुली चने, डबल रोटी, बिस्कुट, सोडा वाटर, विलायती दूध, पौष्टिक दवाइयाँ भी राजसी आहार हैं। हिंदू शास्त्र में प्याज तथा लहसुन वर्जित हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि ये उत्तेजना उत्पन्न करने वाली तरकारियाँ हैं। राजसी, विलासी व्यक्ति इनका प्रयोग करते हैं। इंद्रियां कामुक हो उठती हैं, अतः वे विलास मग्न रहते हैं। क्रोधी, विक्षुब्ध और उत्तेजनाओं में फंसे रहते हैं। मुंह से दुर्गंध आती है। दालों में उर्द, मसूर पौष्टिक होते हुए भी अपने गुणों में तामसिक हैं। यही कारण है कि हिंदू लोग मसूर की दाल से परहेज करते हैं। यह ठाकुर जी के भोग में निषिद्ध है। लाल मिर्च, गर्म मसाला, चटनियां, अचार, तेल, खटाई, सौंठ, अदरक, काली मिर्च, अधिक नमक राजसिक वृत्ति को प्रोत्साहित करते हैं। अत्यंत उष्ण, ठंडा, कड़ुआ, तीता, रूखा, चरपरा मिर्च वाला भोजन स्वभाव में उत्तेजना उत्पन्न करने वाला है। कुछ व्यक्तियों को गर्मा गर्म भोजन लेने की आदत होती है, कुछ बर्फ के बिना पानी नहीं पी सकते, सोडा, लेमन बार बार पीते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से यह बुरा है। राजसी आहार से मन चंचल, क्रोधी, लालची, विषय वासना में लगता है। तामसी आहार, यातयाम गतरसम पूतिपर्युषित चयत उच्छिष्टम पिचामेध्यम भोजन तापस्प्रियम। गीता 17:10। मनुष्य का भोजन अनाज तथा तरकारियां हैं। एक से एक सुस्वादु और गुणकारी फल परमात्मा की सृष्टि में है। मेवों का ढेर मनुष्य को सुखी करने के लिए उत्पन्न किया गया है। दूध और शहद जैसे अमृत तुल्य पेय पदार्थ मानव के लिए सुरक्षित हैं। किंतु शोक, महाशोक, मनुष्य फिर भी तामसी आहार लेता है। तामसी आहारों में मांस आता है। मांस मछली का प्रयोग केवल स्वाद मात्र के लिए बढ़ रहा है। अंडों का प्रयोग किया जा रहा है। भांति भांति की शक्ति वर्धक दवाइयां, मछलियों के तेल, गुटिकाएं, व्यसन इत्यादि तामसी वृत्ति उत्पन्न करते हैं। तामसी आहार में राजसी के अतिरिक्त रसहीन, बासी और विषम अर्थात बेमेल भोजन भी सम्मिलित है। बिस्कुट, डबल रोटी, चॉकलेट, ऑमलेट, मांस से तैयार होने वाले नाना पदार्थ, कॉडलिवर ऑयल, ताकत की दवाइयां, काफी, शराब इत्यादि तामसी वृत्ति उत्पन्न करते हैं। तामसी आहार के लिए गीता में निर्देश है, तामसी आहार से मनुष्य प्रत्यक्ष राक्षस बन जाता है। ऐसा पुरुष सदा दुखी, बुद्धिहीन, क्रोधी, लालची, आलसी, दरिद्री, अधर्मी, पापी और अल्पायु बन जाता है। गीता 0:17, जितना अधिक अन्न पकाया जाता है उतना ही उसके जीवाणु तत्व विलीन हो जाते हैं। स्वाद चाहे बढ़ जाए किंतु उसके खाद्याज्य पदार्थ नष्ट हो जाते हैं। कई कई रीतियों से उबलने, भूनने या तेल में पूरी कचौड़ी की तरह तलने से आहार निर्जीव होकर तामसी बन जाता है। विलायती दूध, सूखा दूध, रासायनिक दवाइयां, बाजारों मिठाइयां निर्जीव होकर अपना जीवाणुत्व नष्ट कर देती हैं। भोजन में सुधार करना शारीरिक कायाकल्प करने का प्रथम मार्ग है। जो व्यक्ति जितनी शीघ्रता से गलत भोजनों से बचकर सही मार्ग पर आरूढ़ हो जाएंगे, उनके शरीर दीर्घकाल तक सुदृढ़, पुष्ट और स्फूर्तिवान बने रहेंगे। क्षणिक जिह्वा सुख को न देखकर भोजन से शरीर, मन और आत्मा का जो संयोग है उसे सामने रखना चाहिए। जब तक अन्न शुद्ध नहीं होगा, अन्य धार्मिक, नैतिक या सामाजिक कृत्य सफल नहीं होंगे। व्यापार, नौकरी या पेशे में कपट, झूठ, छल, अन्याय होता रहेगा। आहार का रासायनिक विश्लेषण। मनुष्य का भोजन 5 प्रकार के वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। 1 वसा, 2 कार्बोज, 3 प्रोटीन, 4 जल, 5 खनिज लवण। जिन पदार्थों में कार्बन होता है उन्हें सजीव तथा जिनमें कार्बन नहीं होता है उन्हें निर्जीव कहा जाता है। उपरोक्त तत्वों में वसा, कार्बोज और प्रोटीन सजीव तथा निर्जीव दोनों पदार्थों से प्राप्त होता है, जल तथा खनिज नमक निर्जीव पदार्थों से। प्रोटीन, प्रोटीन के अभावों में गिल्टियों की क्रिया निर्बल पड़ जाती है और आदमी अपनी अवस्था से पूर्व ही बूढ़ा हो जाता है। प्रोटीन शरीर की बाढ़ और क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक है। प्रत्येक जीव छोटी छोटी कोशिकाओं सेल से विनिर्मित होता है। मस्तिष्क, नाड़ियां, फेफड़े, हृदय, हड्डियां प्रोटीन से ही बनती है। हड्डियों के वर्धन के लिए आवश्यक होने के कारण प्रथम 25 वर्ष तक प्रत्येक जीव को प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। बच्चों के पोषण में हमें इस तत्व का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन वाले पदार्थ प्राप्त हो रहे हैं या नहीं। बड़ों के शरीर की टूट फूट के लिए भी प्रोटीन लाभदायक है। प्रोटीन वाले पदार्थ इस प्रकार हैं, बिना चना गेहूं, जौ या ज्वार इत्यादि का आटा, मशीन से न साफ किए चावल, चना, मटर, लोबिया, आलू, गाजर, शलजम, चुकंदर, हरे शाक भाजियां। वनस्पतियों में प्रोटीन विशेष रूप से विद्यमान रहती है। आधे से अधिक संख्या में पशु जगत वनस्पति अर्थात पत्तियां, घास, हरे शाक भाजियां आदि खाकर प्रोटीन प्राप्त करते हैं। वनस्पति अपने आप में पूर्ण, सब तत्वों से युक्त, पौष्टिक, परिवर्धन विकास के लिए उपयुक्त हैं। शाकाहारी पशु इन्हें खाकर अपना डील डोल शक्तिवर्धन करते हैं। उन्हें अन्य शक्ति वर्धक पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती। मनुष्य को भी चाहिए कि अधिक से अधिक वनस्पतियों का उपयोग कर शरीर को पुष्ट करने का प्रयत्न करें। परमेश्वर ने नाना प्रकार के अन्न, तरकारियां, भाजियां, फल इत्यादि प्रचुर मात्रा में उत्पन्न किए हैं। खेद है कि मनुष्य इन तत्वों के प्रति सजग नहीं है। हरी तरकारियां की खपत उतनी नहीं है जितनी होनी उचित है। होना यह चाहिए कि आधी रोटी खाई जाए तथा आधी हरी भाजियां, सब्जियां, कच्चे फल, मेवे इत्यादि। भारत में फलों के प्रयोग का रिवाज बहुत कम है। जिन्हें ये अनमोल पदार्थ सहज ही उपलब्ध हो सकते हैं, वे भी इन्हें प्रयोग नहीं करना चाहते। दूसरे प्रोटीन वे हैं जो दूध, दही, पनीर, क्रीम, मक्खन, मट्ठा आदि में मिलते हैं। दूध प्रोटीन का खजाना है। सृष्टि के क्रम में परमेश्वर ने दूध द्वारा बच्चों के विकास का क्रम रखा है। माता के स्तन से दूध पाकर बच्चा धीरे धीरे पनपता है, अपनी हड्डियों, मांस तथा व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। यही दूध क्या बड़े क्या छोटे सभी को सुगमता से पच जाता है और पोषण में सहायक बनता है। मक्खन में उच्च कोटि का प्रोटीन है। भगवान कृष्ण ने दूध और मक्खन को अपनाकर भारत में इस उच्च कोटि के खाद्य पदार्थ का प्रचार किया था। आज वनस्पति घी और मक्खन निकले हुए दूध का बोलबाला है। जहां तक संभव हो गाय पालकर घी दूध की व्यवस्था प्रत्येक परिवार को रखनी चाहिए। दूध, घी, मक्खन, पनीर इत्यादि की प्रोटीन सबसे अच्छी होती है। दालों में प्रोटीन की मात्रा अधिक है। खेद है कि हिंदू के भोजन में जो सबसे पौष्टिक तत्व दाल था, वह कम होता जा रहा है। मूंग की पतली दाल सो भी नगण्य मात्रा में प्रयोग में लाई जा रही है। सभी प्रकार की दालें पर्याप्त में लिया करें। दाल की मात्रा में वृद्धि करने से शरीर पोषण होता रहता है। वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक कथन है कि मटर, सेम, लोबिया, उड़द इत्यादि की दालों में दूध की अपेक्षा कहीं अधिक प्रोटीन होता है। जो गरीब हैं, वे चावल, मूंगफली, तिल, खोआ, सरसों आदि के तेलों से प्रोटीन प्राप्त कर सकते हैं। चिकनाई या वसा। इसका उपयोग शरीर की गर्मी बनाए रखने के लिए किया जाता है। मानसिक श्रम करने वालों को इस तत्व की विशेष रूप से आवश्यकता है। चिकनाई प्राणिज भी हो सकती है, जैसे घी, मक्खन आदि में, तथा वानस्पतिक भी, जैसे सरसों का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल इत्यादि। मूंगफली, सोयाबीन, सभी मेवों जैसे बादाम, अखरोट, नारियल, पिस्ता, काजू में चिकनाई होती है। कार्बोज या कार्बोहाइड्रेट। यह शक्ति उत्पन्न करने वाला पदार्थ है। इसकी उत्पत्ति मुख्यतः वनस्पति से मानी गई है। यह गेहूं, चावल, बाजरा, ज्वार, साबूदाना, आलू, काजू, अमरूद, केला, सूखे मेवे जैसे खजूर, मुनक्का, किशमिश आदि और गुड़, चीनी तथा अन्य मीठी चीजों में पाया जाता है। खनिज लवण। प्राकृतिक नमक हमें शाक भाजियों से प्राप्त होते हैं। लवण फलों में होते हैं, यद्यपि हमें इनका ज्ञान नहीं होता। आलू में मुख्य खनिज पदार्थ पोटाश, कैल्शियम तथा फॉस्फोरस होते हैं। फलों, तरकारियों, दालों, अनाजों के छिलकों में भी लवण होता है। इस कारण उन्हें छिलके समेत पकाने या खाने की सलाह दी जाती है। फलों में लोहा, कैल्शियम, फॉस्फोरस सबसे उत्तम होता है और शरीर में अच्छी तरह पच जाता है। तरकारियां और फल जितने ताजे होंगे, उतने ही लवण उत्तम और अधिक मात्रा में उपलब्ध होंगे। पालक के शाक, सलाद, हरी ताजा पत्तीदार साग भाजियां में लोहे का अंश अधिक होता है, अतः पत्तीदार शाक पर्याप्त मात्रा में लेने चाहिए। जल। जल जीवन का प्रमुख तत्व है। हमारे शरीर में 64% जल ही होता है। आज के युग में जल तत्व का शास्त्रीय उपयोग न होने के कारण कब्ज आदि रोग होते हैं। अथर्ववेद में लिखा है, जल ही जीवन दाता है, जल ही रोगों को दूर करता है, जल सब रोगों का संहार करता है। इसलिए यह जल ही तुम्हें सब रोगों के पंजे से मुक्त करे। स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन के लिए जल बड़ा उपयोगी है। उपर्युक्त 5 प्रकार के जीवन तत्वों को विवेक से हमें अपने भोजन में स्थान देना चाहिए। वसा और कार्बोज दोनों शक्ति उत्पन्न करने वाली हैं। एक की कमी की पूर्ति दूसरी के द्वारा हो जाती है। अंतर केवल यही है कि वसा देर में पचती है, जबकि कार्बोज शीघ्र पचती है। जल एक ऐसा बहुमूल्य पदार्थ है जिसकी प्रायः हम उपेक्षा किया करते हैं। संक्षेप में, प्रोटीन युक्त भोजन शरीर को सुदृढ़ बनाता है, उसका प्रयोग कीजिए। मक्खन और ताज़ा सब्जियां खाने की आदत डालिए। दूध तथा दूध से तैयार होने वाले पौष्टिक पदार्थ, ताज़ा पनीर, ताजी हरी सब्जियों के रस, साबुत दालें और चोकर वाला गेहूं का आटा जीवन शक्ति की वृद्धि करता है। 3. प्राकृतिक आहार, फल, शाक, अनाज और तरकारियां। अपने प्राकृतिक रूप में आहार पूर्ण पौष्टिक एवं आयु बल प्रदान करने वाला होता है। पशु पक्षी जलचरों में सर्वत्र बिना पके हुए नैसर्गिक रूप में आहार चबाकर खाने की प्रथा है। प्रकृति जब किसी जीव को उत्पन्न करती है तो स्वयं नैसर्गिक रूप में उसके आहार का भी प्रबंध करती है। प्रत्येक जीव के भोजन की व्यवस्था हमें प्रकृति के आंचल में मिल जाती है। साधारणतः जीवधारी दो प्रकार के हैं, वन मांसाहारी, टू शाकाहारी या फलाहारी। मांसाहारियों की श्रेणी में वे हिंसक जीव जंतु आते हैं जो छोटे जीवों का शिकार करते हैं और कच्चे मांस पर निर्वाह करते हैं। मनुष्य दूसरी श्रेणी का अर्थात शाकाहारी जीव है। उसका मुख्य खाद्य अन्न, फल और तरकारियां हैं। प्रकृति फल खाने का आदेश देती है, उसके प्रति मानव के मन में सहज आकर्षण है। फलों की जीवनदायिनी शक्ति, प्रचुरता में पाए जाने वाले विटामिन और रासायनिक लवण हमारा सर्वोत्तम आहार बनाते हैं। फल साक्षात अमृत सदृश है। अन्न के जीवाणु तत्व तो अग्नि पर जलाने, भूनने, सेंकने से नष्ट भी हो जाते हैं, किंतु फलों के लिए इस प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं होती। प्रकृति स्वयं उन्हें ऐसे प्राण तत्वों से परिपूर्ण करके भेजती है कि उन्हीं के बल पर मनुष्य पूर्ण स्वस्थ रह सकता है। फलाहार ऋषियों, विचारकों, दार्शनिकों तथा मानसिक कार्य करने वालों का सर्वोत्तम आहार है। हल्का, मृदु, रोग नाशक, स्फूर्तिदायक और प्राण शक्ति से भर देने वाला प्राकृतिक भोजन है। शीघ्र पाची होने के कारण फलाहारी का स्वास्थ्य, यौवन, सौंदर्य और रोगों से युद्ध करने की शक्ति बनी रहती है। फल तथा मेवे। फलाहार के अंतर्गत हम दो प्रकार के विभाग कर सकते हैं, फल तथा मेवा। फलों में ताजगी तथा तरलता रहने के कारण वे दूसरे वर्ग की अपेक्षा शीघ्र पाची हैं। कुछ फल रसीले होते हैं, जल का मिश्रण होने के कारण इनका पाचन आसान है। इस वर्ग में नारंगी, अंगूर, आम, टमाटर, मीठा खट्टा, नींबू, मौसमी, गन्ना इत्यादि आते हैं। इनका रस अमृत संजीवनी तुल्य है। इससे पेट में भारीपन नहीं होता, जीर्ण कब्ज दूर हो जाता है, जिससे जितना बन पड़े रसीले फल अवश्य प्रयोग में लाने चाहिए। बाजार की मिठाई मत खाइए, संतरे, आम, अंगूर, मौसमी खाइए। दूसरी श्रेणी में वे फल आते हैं जिनमें गूदा अधिक है। ये देर से पचते हैं, पर पौष्टिक है। अमरूद, अंजीर, नाशपाती, सेब, बेल शरीफा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूजा, बेर, पपीता, केला इत्यादि अपने अपने स्थान पर पौष्टिक हैं। इनसे रासायनिक लवण पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो जाते हैं। फलों की दूसरी श्रेणी मेवे हैं। मेवा में किशमिश, बादाम, पिस्ता, अखरोट, काजू, गिरी, मुनक्का, बेल, छुहारा, चिलगोजे, सूखे अंजीर आते हैं। बादाम और मूंगफली इत्यादि पौष्टिक हैं। इनमें प्रोटीन और चिकनाई विशेष रूप में होते हैं। मेवों के रासायनिक विश्लेषण से विदित होता है कि इनमें चिकनाई, कैल्शियम, चूना, लोहा इत्यादि प्राकृतिक लवण प्रचुर मात्रा में होते हैं। इनमें कोई मिलावट या गंदगी का भी भय नहीं रहता। उन्हें चाहे कच्चे खाएं या पीसकर लें, समान गुणकारी हैं। मेवों का प्रयोग करते हुए यह न मानना चाहिए कि ये दुष्पाच्य हैं। ये दूध की अपेक्षा 8 गुने पुष्टिकारक हैं। कुछ उत्कृष्ट फल। कुछ फलों का विशेष रूप से उल्लेख करना आवश्यक है। सर्वप्रथम नींबू को लें। नींबू चाहे मीठा हो, खट्टा हो या मौसमी हो, परम उपकारी फल है। इसके रस से पेट का पाचन दुरुस्त होता है और मंदाग्नि नहीं होने पाती। प्रतिदिन कागजी नींबू के जल से कुल्ले करने से रस को मसूड़ों पर मलने से दांत ठीक हो जाते हैं और मसूड़ों से रक्त नहीं आता। प्रातःकाल नींबू के रस को गर्म जल में सेवन करने से कब्ज दूर होता है, त्वचा स्वच्छ और सुंदर निकल आती है। अंगूर में पोटेशियम, लोहा, कैल्शियम, फॉस्फोरस, गंधक, सिलिकन आदि महत्वपूर्ण खनिज तत्व होने के कारण इसमें आरोग्यदायक शक्ति है। अंगूर की शक्कर सरलता से पच जाती है। अंगूर का रस पीने से अंतः मार्ग की सफाई होती है, रक्त वृद्धि और रक्त शुद्धि होती है। रोगियों को मजबूत बनाने में इस फल का सर्वाधिक महत्व है। पोषण के लिए संतरे खाया कीजिए। संतरे और नींबू में विटामिन ए शून्य, बी शून्य, सी शून्य और डी शून्य पाए जाते हैं। विटामिन सी शून्य के अभाव में सिरदर्द, बेचैनी, पाचन की खराबी, दांतों के विकार, अंगों के जोड़ों की कमजोरी, स्कवी नामक रोग हो जाता है। संतरे के प्रयोग से इस रोग की रोकथाम हो जाती है। पपीता कब्ज दूर करने की रामबाण औषधि है। खीरा, ककड़ी इत्यादि का भी इसमें विशेष महत्व है। फलों में टमाटर अतीव उपयोगी एवं गुणकारी पदार्थ है। वह मंदाग्नि को दूर कर पेट की तज्जनित शिकायतें दूर करता है। टमाटर में प्राकृतिक लवण भी पर्याप्त मात्रा में होते हैं। लोहे की मात्रा दूध से दूनी होती है और सेब, संतरे, अंगूर, खरबूजे और ककड़ी में मिलने वाले लोहे से अधिक हैं। चूने में यह सेब और केले से श्रेष्ठ है। यह सभी रोगों में हितकर है। आम में खाद्य तथा रोगनाशक रासायनिक तत्वों की प्रचुरता होने के कारण शरीर को पुष्ट और निरोगी बनाने में इसका बड़ा महत्व है। इसमें क्षारों और विटामिनों का आधिक्य होता है। शरीर के अनेक रोग विशेषतः क्षार अथवा विटामिन की कमी के कारण हो जाते हैं और बहुत से रक्त में अम्लता बढ़ जाने से। आम रक्त में क्षारों को बढ़ाकर अम्लता को दूर कर देता है। आम एक प्राकृतिक खाद्य है जिसमें शर्करा स्वाभाविक रूप में रहती है। आमरस के शरीर में पहुंचते ही रक्त बनना आरंभ हो जाता है, जो पाचन शक्ति गरिष्ठ खाद्यों के प्रयोग में लाने से क्षीण हो जाती है, वह पुनः तीव्र हो जाती है। आम के साथ दूध का प्रयोग कर अम्लकल्प करें, जिससे दुर्बलता, रक्ताभाव, स्नायु दौर्बल्य, धातु दौर्बल्य, अग्निमिद्धि, आरंभिक अवस्था का क्षय, अनिद्रा, रक्तचाप की कमी या अधिकता, गठिया, दमा, हृदय की कमजोरी इत्यादि बीमारियां दूर होती हैं। आम मीठे, पतले रस वाले, चूसने वाले ही लीजिए। दाल के आमों में अमृत तत्व विशेष मात्रा में मौजूद रहते हैं। चूसने से पर्याप्त थूक का मिश्रण हो जाता है, इसलिए जल्दी पचता है। चाकू से काटकर खाया जाने वाला आम यदि खूब चबा चबा कर स्वाद के साथ धीरे धीरे खाया जाए तो समान गुणकारी है। बेल देखने में कठोर पर गुणों में जादू जैसा है। यह कब्ज दूर कर कोठे को साफ कर उसे सजीव बनाता है। पतले दस्तों में दिए जाने पर यह मल को बांधता है। नाशपाती रेचक है। इसके रस की प्राकृतिक मिठास शरीर द्वारा तुरंत उपयोग में आ जाती है। यह हाथों में एकत्रित पुराने आम को भी निकालता है। टमाटर, मौसमी, संतरे यदि खट्टे न हों, मीठे आम, खजूर श्रेष्ठ फल हैं। केला, नाशपाती, सेब आदि कुछ फल कब्ज करते हैं। आंवले की हिंदू शास्त्रों में बड़ी महिमा है। प्रतिदिन प्रातःकाल आंवले का मुरब्बा लाभदायक है। 4. फलों की रोग निवारक शक्तियां। फलों में प्रकृति ने जीवन शक्ति की अभिवृद्धि के लिए उत्कृष्ट आहार दिया है। भर पेट लें, मिठाई के स्थान पर फल खरीदा करें। यदि बच्चों में मिठाई के स्थान पर फल खाने की आदत डाली जाए तो बड़ी शुभ और स्वास्थ्यवर्धक है। श्री एडोल्फ जुस्ट का कथन है, फलों विशेषकर मेवों का भोजन शरीर को सब प्रकार की शक्तियों से पूर्ण करता है। उसकी मानसिक शक्तियां उन्नत होती हैं और देवताओं की सी क्षमता प्राप्त होती है। प्रकृति में जो सर्वांग सुंदर पौष्टिक तत्व है, वह फलों में भर दिया गया है। महात्मा गांधी जी की सलाह मानिए, ऋतु के फल जितने मिल से खाएं। आम के मौसम में आम, जामुन के मौसम में जामुन, अमरूद, पपीता, संतरा, अंगूर, खट्टे मीठे नींबू, मौसमी इत्यादि फलों का उचित उपयोग होना चाहिए। फल प्रातःकाल खाना अच्छा है। जिनका खाने का वक्त जल्दी का है, उन्हें सवेरे केवल फल खाना चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा के आचार्य श्री विठल दास मोदी के विचार देखिए, फलों में न श्वेतसार होता है, न चिकनाई, प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है, पर उनमें विटामिन, प्राकृतिक लवण और मिठास की प्रधानता रहती है। इस मिठास के कारण फल पचा हुआ भोजन कहलाता है। स्वाद के लिए खट्टे रसों में शहद, किशमिश, मुनक्का, अंजीर आदि का रस भी मिलाया जा सकता है। फलों के रस कृमिनाशक होते हैं, उनके संपर्क में कीटाणु एक क्षण के लिए नहीं ठहर सकते। नींबू और खट्टे सेब का रस तो इस काम को और भी तेजी से करता है। मोटापा और पित्त दोष में फल गुणकारी है। ज्वर के रोगी को यदि कोई भोजन दिया जा सकता है तो वह फलों का रस ही है। जर्मनी में ऐसे रोगियों को किशमिश, मुनक्का आदि फलों को उबालकर उसका पानी छानकर पिलाने की प्रणाली चली आ रही है। गुर्दे की बीमारी में फलों का रस शरीर शुद्धि में सहायक होता है। गठिया, अनिद्रा, कब्ज, पुराने सिर दर्द के रोगी आदि अधिकतर फलों का व्यवहार करें। फलों में बीमारियों से चंगा करने की अद्भुत शक्ति है, जिसका परिचय ऊपर दिया गया है। फलों के प्रति आरंभ से ही बच्चों में रुचि उत्पन्न करनी चाहिए। छोटे बच्चों को ऐसे फल आरंभ से ही दिया करें जिन्हें दांत से कुचल कर खा सकें। खीरा, ककड़ी, नाशपाती, सेब, अंगूर इत्यादि लाभदायक हैं। फलों के अमृत सदृश रस का उल्लेख किया गया है। जिन फलों का रस आप सरलता से ले सकते हैं, वे अंगूर, अनार, संतरे, टमाटर, मौसमी इत्यादि हैं। फलों का रस सुपाच्य होने के कारण बच्चों को बीमारियों से बचाता है। गन्ने का रस भी अद्भुत शक्ति वाला है। फल भोजन के साथ अंत में खाने का नियम रखना चाहिए। अनन्नास, अनार, नींबू, नारंगी, सेब, अंगूर, मकोए, मुनक्का आदि के रस को पानी में मिलाकर ज्वर के रोगी को लाभ सहित दिया जा सकता है। 5. फलों के बीज पौष्टिक खाद्य। फलों के बीज खाद्य अन्न का काम दे सकते हैं। खरबूजे, तरबूज, खीरे, ककड़ी, कद्दू के बीज में ऊंचे और बढ़िया प्रकार की घुलनशील चिकनाई, प्रोटीन तथा प्राकृतिक लवण विद्यमान हैं। इन खाद्यों को भूनकर या तलकर खाने से इनके विटामिन नष्ट हो जाते हैं, अतएव इनके पेय काम में लाना श्रेयस्कर है। कच्चे बीजों को पीसकर बादाम, पिस्ता इत्यादि मिश्रित कर ठंडाई के रूप में ले तो शरीर के मांस मज्जा की वृद्धि में सहायता मिलती है। इनकी चिकनाई में फॉस्फोरस मिला होता है, जिससे स्नायु शक्ति की अभिवृद्धि होती है। श्री टी 0.04 अपने अनुभव करते हुए लिखते हैं, मुझे जब इन बीजों का पुष्टिकारक गुण ज्ञात हुआ तो मैं इन बीजों के छिलकों को पृथक करने की खोज में लगा। मैंने बीजों को आटा पीसने वाली चक्की में पीसा तथा फिर पानी में उबालकर छानकर पिया। सिलबट्टे से भी यही काम लिया जा सकता है। इस प्रकार बने शरबत में इच्छानुसार शहद या गुड़ मिलाया जा सकता है। लोग बादाम पिस्ते की ठंडाई बनाया करते हैं, पर इन बीजों की बनी ठंडाई किसी प्रकार कम नहीं है। मेवों की बनी ठंडाई बच्चों के लिए भारी पड़ती है, पर इन बीजों की ठंडाई तो उन्हें दूध की तरह या दूध की जगह नित्य दी जा सकती है। बीज सहित फलों जैसे अमरूद, खीरा, ककड़ी को खाने की आदत डालनी चाहिए। बाजार से एकत्रित कर गर्मी में इन्हीं की ठंडाई से काम चलाया जा सकता है। 6. तरकारियां अधिक लीजिए। तरकारी का दूसरा तात्पर्य है खनिज लवणों का प्रयोग। लोहा, सल्फर, फास्फोरस, कैल्शियम इत्यादि आवश्यक लवण हम तरकारियों से प्राप्त किया करते हैं। तरकारी का रस भी फलों को नैसर्गिक गुण रखता है। सलाद, पालक, मेथी, बथुआ, नैनुआ, पातगोभी, शलजम, मूली इत्यादि शाक विशेष गुणकारी हैं। इनमें खनिज लवण विशेषतः चूना अधिक मात्रा में रहता है। विटामिन ए शून्य इनमें अधिक रहता है। ये शरीर के संरक्षक आहार तत्व हैं, इनमें कोई संदेह नहीं है। भोजन में क्षार की कमी होने से आंते कमजोर होकर भीतरी झिल्लियां मृतप्राय हो जाती हैं, किंतु सुप्रान तरकारियों के प्रयोग से उनमें सजीवता लौट आती है। तरकारियों के छिलके खाद्य पदार्थ से परिपूर्ण होते हैं। इनमें विटामिन भी बहुत होते हैं। अतः जिन तरकारियों का उपयोग आप बिना छिलके उतारे कर सकें, उन्हें कदापि न छीलें। छिलके वह रक्षात्मक आवरण हैं, जिनमें प्राण शक्ति कूट कूट कर रखी गई है। साग तरकारियों का भोजन हल्का और सुपाच्य है। प्रतिदिन दोनों समय के भोजनों में एक पाव तरकारी की व्यवस्था प्रत्येक को रखनी चाहिए, क्योंकि साग भाजियों का अवशिष्ट अंश क्षारधर्मी होता है। महात्मा गांधी जी ने आरोग्य की कुंजी पुस्तक में स्वस्थ रहने के लिए एक पाव पकी और आधी छटांत कच्ची तरकारी नित्य खाना आवश्यक बताया है, किंतु इनका अधिक प्रयोग कब्ज दूर करने में विशेष सहायक होता है। 7. सलाद तैयार करें। कच्ची तरकारियों को खाने के लिए साग भाजियों को सलाद बनाकर लेने की प्रथा पाश्चात्य देशों में चल रही है। अनेक सब्जियां ऐसी हैं जिन्हें कच्चा ही खाया जा सकता है। पकाने से उनकी जीवनी शक्ति नष्ट हो जाती है या जल भूनकर कम हो जाती है। इन सब्जियों में गाजर, मूली, लौकी, खीरा, अदरक, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया, प्याज, सलाद, पत्ता गोभी, फूल गोभी इत्यादि हैं। इनमें से प्रत्येक को कच्चा ही काटकर नींबू या टमाटर के साथ मिश्रित कर नमक मिर्च इत्यादि लगाकर खाया जा सकता है। गाजर, मूली, अदरक तथा नींबू या टमाटर की खटाई सर्वोत्तम है। इनको बारीक बारीक काट लीजिए अथवा कद्दूकस में कस लीजिए और सुविधानुसार मिर्च नमक मिश्रित कर लीजिए। फिर भोजन के साथ हाथ पाव जरूर लिया कीजिए। तरकारियों और फलों के मिश्रित सलाद बड़े स्वादिष्ट होते हैं। ककड़ी, खीरा, अमरूद, केला, नाशपाती, पालक, हरा धनिया और नींबू, टमाटर सब मिलाकर काम में ले बड़ा स्वादिष्ट होता है। इनमें खनिज लवण, चूना, लोहा, पारा, विटामिन अधिक होते हैं। प्रत्येक मौसम में कुछ न कुछ तरकारियां मिल सकते हैं, उन्हीं की सहायता से सलाद तैयार करने चाहिए। रायते भी गुणकारी हैं। दही में जो सब्जियां जैसे कसा हुआ घिया, ककड़ी, खीरा, कचनार, बथुआ इत्यादि मिलाई जाएं, वे या तो बिल्कुल ही न उबाली जाएं या हल्की सी उबाल ली जाएं। दही में केला, सेब, नाशपाती इत्यादि भी मिलाकर रायते तैयार किए जा सकते हैं। नींबू प्राकृतिक लवण का खजाना है। इसकी खटाई में ठंडक उत्पन्न करने का विशेष गुण है। यह गर्मी से बचाता है। सलाद में इसका प्रयोग गुणकारी है। नींबू का रस पानी में मिलाकर पीने से कब्ज दूर होता है। नींबू विटामिन सी का भंडार है। इसी प्रकार टमाटर में पौष्टिक तत्व भरे हुए हैं। इसमें विटामिन सी बहुत होता है। विटामिन ए भी होता है, जो घी, दूध, मक्खन में होता है। 2-3 छटांक टमाटर प्रतिदिन खाने से शरीर को पोषक तत्व मिलते रहते हैं। इसमें प्राकृतिक लवण भी बहुत होते हैं। लोहे की मात्रा दूध से दूनी होती है, जो सेब, केले और चावल से श्रेष्ठ ठहरता है। पोटाश में इसकी समता करने वाले दूसरे फल नहीं हैं। यह रक्त को स्वच्छ एवं मजबूत बनाता और हृदय दौर्बल्य को दूर करता है। इसके सेवन से क्षुधा तीव्र होती है और पाचन शक्ति सजीव बनती है। आपका नित्य का भोजन कुछ इस प्रकार का हो सकता है। नाश्ते में मौसम का कोई अच्छा फल जैसे आम, केला, नारंगी, अंगूर, टमाटर, ककड़ी, खरबूजा, बेर इत्यादि। जब ये वस्तुएं उपलब्ध न हो सके तो किशमिश, मुनक्का, खजूर सा कोई मीठा फल हो सकता है। दूध पाव भर और 10-15 बादाम अथवा मट्ठा, दही इत्यादि लिया जा सकता है। नाश्ता हल्का रहे और शीघ्र पाची हो, अन्यथा दोपहर खुलकर क्षुधा प्रतीत न होगी। बिना क्षुधा खाने से विकार वृद्धि होगी। दोपहर के भोजन में गेहूं, बाजरा या मकई की रोटी, थोड़ा चावल, पाव भर हरा सलाद और पकी तहरी, मठा या दही तथा मक्खन, दाल छिलकों सहित रहे। कच्ची तरकारियां भी खाई जा सकती हैं, जैसे गाजर, मूली, खीरा, ककड़ी, प्याज, टमाटर, पालक, पातगोभी इत्यादि। इनमें खटाई के लिए नारंगी, नींबू, सिरका, रसभरी इत्यादि का रस मिश्रित किया जा सकता है। दही में केला, किशमिश, लौकी, बथुआ, खीरा इत्यादि मिलाकर रायता बना लिया करें। सायंकाल का भोजन हल्का रहे। एक हरी, एक पकी तरकारी, रोटियां, दही और रसदार कुछ फल। रात्रि में सोने से पूर्व आध सेर दूध, जो अधिक गर्म न हो। 8. दुग्धाहार। ऋषियों का भोजन दूध मर्त्यलोक का अमृत है। अमृत क्षीर भोजनम। प्रकृति में शिशु के उत्पन्न होने से वृद्ध होकर मरने तक दूध मनुष्य के काम आता है। प्रकृति ने दूध में सबसे संतुलित आहार का क्रम रखा है, जिससे बच्चा खाकर पूर्ण परिपुष्ट और स्वस्थ बनता है। दूध मनुष्य की प्राकृतिक पौष्टिक खुराक है। वे धन्य हैं जिन्हें गौ दूध नियमित प्राप्त हो जाता है। दूध से बनने वाले अन्य पदार्थ छाछ, मक्खन, दही, पनीर इत्यादि आदर्श भोजन सब गुणों से पूर्ण है। दूध पृथ्वी का अमृत है। दूध का भोजन फलाहार से घटिया किंतु अन्नाहार से श्रेष्ठ आहार है। धारोष्ण और छना हुआ दूध सर्वोत्कृष्ट होता है। इसका मुख्य लाभ यह है कि यह शरीर के थके हुए कोषों को नवशक्ति प्रदान करता है, वीर्य तत्काल बढ़ता है, पेट हल्का रहता है और मन शांत एवं प्रसन्न रहता है। मुंह में रखकर स्वाद के साथ दूध पीना नहीं, खाना चाहिए। खाने का अभिप्राय यह है कि धीरे धीरे संतोष और स्वाद के साथ मजा लेकर पिए। हिंदू शास्त्रों के अनुसार यह हमारा पवित्रतम आहार है। इसके पान करने से बुद्धि भी निःसंदेह सात्विक बन जाती है, आलस्य नहीं आता, मन शांत और पवित्र बना रहता है। खालिस दूध में जल 88%, दुग्ध शर्करा 4.5%, खनिज क्षार 0.7% होना चाहिए। कम से कम प्रति व्यक्ति की खुराक में पाव भर दूध प्रतिदिन रहना चाहिए। दूध के पौष्टिक रूपों में दही और मठा का विशेष स्थान है। दही भूलोक का अमृत है। इसमें जो मक्खन रहता है वह सुपाच्य और स्निग्धता रखने वाला है। छाछ के लिए भी अमृत की उपमा का प्रयोग किया गया है, यथा सुरानामृत हिताय तथा नरानामृत अक्रमाहु। जैसे देवताओं के लिए अमृत है, मनुष्य के लिए मठा हितकारी है। मठा सेवन करने वाला मनुष्य कभी रोगों के जाल में नहीं फंसता, रोगी का रोग दूर हो जाता है, मठा से रोग पुनः उत्पन्न नहीं होता। मठा 5 प्रकार से बनाया जाता है। 1. द्योल मलाई के सहित बिना जल डाले जो दही मथा जाता है, ऐसे मठे को द्योल कहते हैं। इसमें शक्कर मिलाकर खाने से वातपित्त का नाश करता है और आनंद देता है। 2. मथित और द्योल में इतना ही अंतर है कि मथित में मलाई पृथक कर लेते हैं, यह कफ और पित्त का नाश करता है। 3. तक्र, जिसमें मथते समय दही का चौथाई भाग पानी डाल दिया जाए, यह मल को रोकने वाला, कसला खट्टा, पाक में मधुर और हल्का है। उष्ण वीर्य, अग्नि दीपक, वीर्यवर्धक, पुष्टिकारक और वातनाशक है। 4. उदश्वित, जिसमें दही का आधा भाग जल मिले, यह कफकारक, बल बढ़ाने वाला और आओं का नाश करता है। 5. लच्छिका छाछ, जिसमें मलाई निकाल ली गई हो और मत्कर भी हिसाब जल मिलाया जाए, यह शीतल, हल्का, पित्त, प्यास और थकावट को दूर करता है, वायुनाशक है। बकरी के दूध का मथा संग्रहणी वायुगोला, बवासीर, शूल और पांडु रोग को नष्ट करता है। यह हल्का और चिकना होता है। चरक में लिखा है कि तक्र दीपन, ग्रही और हलक होने के कारण ग्रहणी रोग में हितकर है, पाक में होने के कारण पित्त प्रकोप से बचाता है। मधुर, अमल और चिकना होने के कारण वायुनाशक है। कषाय और उष्ण होने से कफ में हितकर है। प्रोशून्य, ड्यूक्ले और मैशिनी काफ आदि प्रसिद्ध जंतुशास्त्र विशेषज्ञों का मत है कि मठे में लैक्टिक जंतु रहते हैं, जो शरीर के विषैले कीड़ों का नाश करते हैं और हमारे लिए विशेष उपकारी होते हैं। ऋतुओं के अनुसार मठे का सेवन निम्नलिखित वस्तुओं के साथ करना अधिक लाभदायक होता है। हेमंत, शिशिर और वर्षा ऋतु में मठा या दही खाना उत्तम है, किंतु शरद, वसंत और गर्मी में प्रायः यह हानिकारक है। दही या मट्ठा कफ कारक है और साथ ही पित्त को भी बढ़ाता है। इस कारण वसंत में हानिकारक होता है क्योंकि इस ऋतु में तो कफ स्वयं ही बढ़ जाता है और रोग उत्पन्न करता है। ग्रीष्म और शरद में पित्त कुपित हो जाता है, इस कारण पित्त गुण वाला दही इन ऋतुओं में हानिकारक है। मट्ठा क्षुधा को बढ़ाता है, नेत्रों की पीड़ा को शांत करता है और जीवनी शक्ति को बढ़ाता है। शरीर के मांस और रक्त की कमी को दूर करता है, कफ और वायु को शांत करता है। 9. अन्नाहार। भारत में ऋषियों का भोजन दूध और फल ही रहे हैं। सभ्यता के आरंभ में मानव कच्चे गेहूं और कच्चे चने इत्यादि खाकर रहा करते होंगे। कच्चे अन्न में सबसे अधिक पौष्टिक तत्व वर्तमान में रहते हैं। अन्न को भिन्न भिन्न तरीकों से पीसने, कूटने, छानने और उनका छिलका दूर करने में प्राण शक्ति कम हो जाती है। बाजार में बिकने वाले अन्न यों भी सड़े गले, भीजे हुए और घुन लगे हुए होते हैं। उनका प्राण तत्व कीड़े पहले से ही चट कर लेते हैं। अतः पौष्टिक अन्न खरीदिए और यह जांच कर लीजिए कि गेहूं, ज्वार, चना, बाजरा इत्यादि में कुछ लगा हुआ तो नहीं है। वे सड़े, घुने और बास वाले तो नहीं है। आटा या तो स्वयं घर पर हाथ की चक्की से तैयार कीजिए अथवा कराए। बिजली की चक्की में पिसा आटा प्राण शक्ति से शून्य हो जाता है। आटा बारीक न हो और उसमें से भूसा या दाल में से चोकर न निकाली जाए। दालें उड़द, मूंग, मसूर, अरहर इत्यादि छिलकेदार साबुत बनाई जाएं तो पौष्टिक होती हैं। उबाले हुए गेहूं, भूसी युक्त दलिया, कच्चे जौ, कच्चे गेहूं श्रेष्ठ आहार हैं। चोकर और कणों के निकल जाने पर अन्न का बहुमूल्य भाग नष्ट हो जाता है। जो भूसी छिलके, चिड़ी इत्यादि पशुओं को खिलाई जाती है वह पौष्टिक तत्व है। अन्न में चावल का स्थान महत्वपूर्ण है। चावल का दाना कोमल होने के कारण प्रकृति ने उसके ऊपर एक आवरण रखा है, इसलिए उसे हटाना पड़ता है। लेकिन कूटना इतना ही चाहिए कि भूसी और चावल के मध्य का कण निकल जाए। मशीन के द्वारा बनाए जाने वाले चावलों से बहुमूल्य तत्व नष्ट हो जाता है, अतः वे प्राण शक्ति से शून्य होते हैं। हिंदू के भोजन में दाल ही पौष्टिक पदार्थ है। महात्मा गांधी जी ने दाल के विषय में लिखा है, बिना दाल की खुराक को अधूरी मानते हैं। मांसाहारी भी दाल खाता है। जिन्हें मजदूरी करनी पड़ती है और जिन्हें जरूरत भर को या बिल्कुल दूध नहीं मिलता, उनका काम दाल के बिना नहीं चल सकता। दाल हमारा पौष्टिक आहार है। निम्नलिखित खुराक में उपर्युक्त सब तत्व प्राप्त हो सकते हैं। गेहूं 2 छटांक, चावल 2 छटांक, दूसरे अन्न 2 छटांक, कुल 6 छटांक, तेल 1 छटांक, गुड़ 1 छटांक, साग और हरी तरकारियां 1 पाव, दाल 1.5 छटांक, दूध 1 पाव तथा कुछ नमक मसाले। प्रतिदिन 2-2.5 सेर जल। डॉक्टर 0N0R0 धर ने आहार संबंधी आधुनिक विचारधारा का उल्लेख करते हुए लिखा है कि भोजन में प्रोटीन की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक और श्वेतसार की मात्रा कम होनी चाहिए। आधुनिक सभ्य समाज अब कम से कम अन्न जैसे चावल, गेहूं, जौ, बाजरा और यहां तक कि आलू भी, जो वास्तव में एक लाजवाब भोजन है, ग्रहण करना चाहते हैं। हमारे भोजन का आधा अंश तो गेहूं इत्यादि हो, शेष तरकारियों, फलों, शाक भाजियों का हो। हमारे शरीर का उक्त एवं तंतु कुछ क्षारधर्मी होते हैं, इसलिए साग भाजियां हमारे लिए उपयोगी होती हैं। चीनी के बजाय गुड़ का प्रयोग कहीं अधिक लाभदायक है, क्योंकि गुड़ में श्वेतसार, कैल्शियम, पोटेशियम, लोहा, फॉस्फोरस आदि खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं। साधारण जनता के पास शरीर के पोषण के लिए चर्बी, चिकनाई, पानी के साधन मक्खन, घी इत्यादि हैं। यदि उन्हें प्राप्त न कर सके तो तिल, सरसों या अलसी के तेल इत्यादि भी उतने ही पुष्टिकारक हैं। तेल पौष्टिक पदार्थ हैं, इनसे शरीर में चर्बी की कमी पूरी होती है। वनस्पति तेल बेकार है, उसमें कोई जीवन शक्ति नहीं, उल्टे हानि है। वनस्पति को दिए में जलाना चाहिए और तिल, सरसों के तेल को खाना चाहिए। 10. महान उपकारी जल तत्व। जल कितनी सर्व सुलभ वस्तु है, किंतु जीवन शक्ति के लिए कितनी बहुमूल्य, कितनी उपयोगी। ईश्वरीय सृष्टि का यह नियम है कि जीवन के लिए जो जो तत्व बहुमूल्य हैं वे उतनी ही आसानी से सर्वसुलभ कर दिए गए हैं। जल, धूप, मिट्टी, वायु इत्यादि ऐसे ही बेशकीमती प्राण तत्व हैं। 11. रोग नाशक जल। कम जल का परिणाम कब्ज होता है, तरावट कम हो जाती है और बदहजमी, खुश्की रहने लगती है। रात दिन में कम से कम 2.5 सेर जल शरीर में पहुंचाना चाहिए, जिससे अंदर की मशीन सुचारू रूप से काम कर सके। आंतरिक मशीनरी की रचना कुछ इस प्रकार है कि दूध इत्यादि पे तत्व जल्दी पचते हैं। ठोस भोजन भी दांतों और लार द्वारा जल से मिलकर दूध सरीखा बन जाता है। जो कम जल पीते हैं उनका भोजन ठोस पड़ा रहता है और मंदाग्नि उत्पन्न करता है। जल पसीने के रूप में निकलकर त्वचा के सूक्ष्म रंध्रों को स्वच्छ रखता है। मूत्र के रूप में निकलकर अंदर की गंदगी, विष और अनावश्यक चीजों को बाहर निकालता है। पर्याप्त जल लेने से त्वचा लाल रहती है, तरावट बनी रहती है, कब्ज नहीं होने पाता, मन प्रसन्न रहता है और रक्त पतला रहता है। वेदों में जल रोग नाशक औषधि बताया गया है, आपो इद्धव भेषसुरापो अभीर्चातना आप सर्वस्य भर्षगोस्तास्तु क्रीरावंतु भेषजम, अर्थात जल ही परमौषधि है, जल रोगों का दुश्मन है, यह सभी रोगों को दूर करता है, इसलिए यह तुम्हारे सब रोगों को दूर करे। अथर्व वेद में लिखा है, जल ही दवा है, जल रोगों को दूर करता है, जल सबका संहार करता है, इसलिए यह जल तुम्हें कठिन रोगों के पंजे से छिड़ावे। भगवान ने स्वयं आदेश दिया है, जल से अभिसिंचन करो, जल सर्वप्रधान औषधि है, इसके सेवन से जीवन सुखमय बनता है और शरीर की अग्नि भी आरोग्यवर्धक होती है। वेदों में एक स्थान पर प्रार्थना में जल का इस प्रकार उल्लेख किया गया है, जल हमको सुख दे, सुखोपभोग के लिए हमें पुष्ट करे, बड़ा और दृढ़ करे। जिस प्रकार माताएं अपने दुधमुंह में बच्चों को दूध पिलाती हैं, हे जल, उसी प्रकार तुम हमें अपना मंगलकारी रसपान कराओ, तुम हमारे मलों का नाश करो और योग्य संतान प्राप्त करने में सहायक हो। हे परमेश्वर, हम तुमसे अनादिक पदार्थों के स्वामी, मनुष्य मात्र के रक्षक तथा रोग मात्र की औषधि जल मांगते हैं। जल में अमृत है, जल में औषधियां हैं। हे ईश्वर, दिव्य गुणों वाला जल हमारे लिए सुखकारी हो, अभीष्ट पदार्थों की प्राप्ति करावे, हमारे पीने के लिए हो, संपूर्ण रोगों का नाश करे तथा रोगों से उत्पन्न होने वाले भय को न उत्पन्न होने दे और निरंतर हमारे सामने बहे। हे परमात्मा, मुझ में जो पाप बाहर या भीतर हैं, मैंने जो द्रोह विश्वासघात किया है या मैंने जो अपशब्द कहे हैं या मैं जो झूठ बोलता हूँ, उन सबको जल बहा ले जाए। 12. जल के अमृतों में गुण। जल में पौष्टिक एवं रक्षात्मक तत्व प्रचुरता से विद्यमान है। शीतलता, तरलता, हल्कापन एवं स्वच्छता इसके प्राकृतिक गुण हैं। भ्रम, क्लांति, मूर्छा, पिपासा, तंद्रा, वमन, निद्रा को दूर करना, शरीर को बल देना, उसे तरावट देकर तृप्त करना, हृदय को प्रफुल्लित रखना, शरीर के दोषों को दूर करना, छह प्रकार के रसों को प्रदान करना और प्राणियों के लिए अमृत तुल्य होना, आंतरिक मल पदार्थों को धो डालना, स्नान द्वारा बाह्य शरीर को स्वच्छ बनाना, शरीर के विजातीय तत्वों का मूत्र पसीना बाहर निकालना, आमाशय गुर्दों त्वचा को स्वच्छ और क्रियाशील बनाना, शरीर में खाद्य का काम देना आदि जल के कुछ गुण हैं। मानव शरीर में 66% जल ही है। खाद्य पदार्थों के पश्चात हमारा शरीर जल पर ही निर्भर रहता है। केवल जल पीकर हम एक मास बखूबी जीवित रह सकते हैं। हमारे ही शरीर को नहीं, वनस्पतियों का भी यह जीवन दाता है। जल में रहने वाले जीवों का तो यही जीवनाधार है। पृथ्वी जल तत्व से ही उत्पन्न हुई है। गीता में भगवान ने निर्देश किया है, रसोहम सु कौन्तेय 7-8, हे अर्जुन, मैं जल में रस रूप में रहता हूँ, अर्थात जल में जीवन चलाने वाला जो रस प्राण है वह मैं हूँ। जल में और कई विशेषताएं हैं, जैसे सोख लेने की शक्ति, चीजों को अपने में मिला लेने और रूप परिवर्तन की शक्ति। शरीर के विकारों को धो डालने के लिए तरल रूप में इसका उपयोग किया जाता है। यह शरीर से विषैले यूरिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिडों को निकाल बाहर करता है। 13. दैनिक जीवन में जल का प्रयोग। दैनिक जीवन में पर्याप्त जल का प्रयोग करना चाहिए। प्रातःकाल उषापान आधे सेर जल से लेकर सायंकाल सोने से पूर्व तक 2.5 सेर तक जल शरीर में पहुंचाना चाहिए। जल धीरे धीरे स्वाद सहित समुचित लार सम्मिश्रित कर दूध की भांति पिए और यह जल मुझे स्वास्थ्य बल स्फूर्ति जीवन देगा, ऐसी पवित्र भावना मन में रखें। भोजन के आध घंटे पश्चात जल पीना प्रारंभ करें और घंटे भर के अंतर से पाव पाव भर शीतल जल पीते रहें। गर्मियों में अधिक जल की आवश्यकता होती है। उपवास काल में पर्याप्त जल का उपयोग करने से अंदर की मशीनरी अच्छी तरह धुल जाती है। यदि नींबू का रस मिश्रित कर लिया जाए तो और भी गुणकारी है। प्रतिदिन सोने से पूर्व आध सेर जल पिया करें। जल कब न पिए। जलपान के कुछ आवश्यक नियम डॉक्टर जीरो लक्ष्मी नारायण टंडन ने इस प्रकार दिए हैं। आप लिखते हैं, हमें यह भी जानना चाहिए कि जल कब न पीना चाहिए। 1. भोजन के तुरंत पहले या तुरंत बाद जल न पिए। 2. पानी पीकर तुरंत पेशाब नहीं करना चाहिए। 3. एनीमा लेने के 15 मिनट पूर्व या 15 मिनट पश्चात तक जल न पिए। 4. चिकनी चीजें दूध मलाई मक्खन घी तथा मेवे भुने चने फल मिठाई आदि के बाद जल न पिए। खीरा ककड़ी खरबूजा इत्यादि के ऊपर जल न पिए, हैजा होने का भय है। फल आदि के ऊपर जल पीने से सर्दी नजला जुकाम इत्यादि हो सकता है। 5. सोकर उठने पर तुरंत पानी पीने से जुकाम सर दर्द तथा तबीयत भारी होने का डर रहता है। 6. गर्म चीजों चाय दूध आदि के ऊपर जल न पिए। 7. जुलाब आने पर जल न पिए, क्योंकि तब आंत कमजोर होती है और मल बाहर फेंकने का काम करती है। 8. स्त्री सन के पश्चात तुरंत जल न पिए क्योंकि शरीर यकायक गर्म और सनसनाहट के बाद स्तब्ध सा हो चुकता है, अतः तुरंत ठंडक पहुंचाना ठीक नहीं। 9. व्यायाम, कड़ी धूप, कठिन परिश्रम या लू के बाद तुरंत जल न पिए। गर्मी सर्दी एक साथ पहुंचाना ठीक नहीं है, उपरोक्त अवसरों को छोड़कर पर्याप्त जल का प्रयोग करें। बुखार में जल गर्मी कम कर देता है, ठंडा पानी रक्तचाप घटाता तथा त्वचा के रंध्रों को क्रियाशील बनाता है, स्नायु तथा नाड़ियों को हल्के तौर पर प्रभावित करता है और शरीर को पोषण करता है। 14. चमत्कारी विटामिन अभाव एवं प्राप्ति। विटामिन वे पौष्टिक तत्व हैं जिनके अभाव में शरीर नाना बीमारियों से परिपूर्ण बनता है। प्रथम महायुद्ध के दिनों में शाक तरकारियों के अभाव में सैनिकों को स्कवी की बीमारी हुई थी जो विटामिन सी द्वारा दूर हुई। तब से विटामिन तत्व प्रमुखता ग्रहण करता जा रहा है। विटामिन 5 होते हैं ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ ई ओ। विटामिन ए 0, विटामिन ए 0 के अभाव में मंदाग्नि, त्वचा की शुष्कता, शक्ति की कमी, अतिसार, पाचन की खराबी, नेत्र प्रदाह, बाढ़ का रुकना, शारीरिक निर्बलता, पथरी एवं बंध्यत्व इत्यादि रोग होते हैं। यदि हम विटामिन ए शून्य वाले पदार्थ पर्याप्त मात्रा में लें तो हम इन रोगों से बच सकते हैं। विटामिन ए शून्य वाले पदार्थ पर्याप्त मात्रा में लें तो हम इन रोगों से बच सकते हैं। विटामिन ए 0 निम्न शाक तरकारियों में विशेष रूप से विद्यमान रहता है, अतः उन्हें अवश्य प्रयोग में लाया कीजिए। पालक, गाजर, हरी मिर्च, टमाटर, मटर, सलाद, जिमीकंद, करेला, कुम्हाड़ा, चिचिया, सहजन, अजवाइन का पत्ता, करमकल्ला, पत्ता गोभी, विसारी, चौलाई, धनिया, पुदीना, बथुआ इत्यादि तरकारियां। फलों में केला, खुबानी, आम, अनन्नास, सूखे फल, अंजीर, आलूचा, कटहल, कमरख, खजूर, संतरा, पपीता, पिस्ता इत्यादि विटामिन ए 0 से पूर्ण हैं। इनके अतिरिक्त मक्खन, मलाई, दूध, पनीर, बाजरा, बिना भूसी की अरहर, मसूर, गुड़ इत्यादि में यह पाई जाती है। विटामिन बी 0 इसकी कमी के कारण मानव शरीर में निर्बलता, मंदाग्नि, आंतों में गड़बड़ी, धड़कन इत्यादि होते हैं, बेरीबेरी जैसे रोग होते हैं। यह विटामिन हमें जौ, गेहूं का अंकुर, चावल का कण इत्यादि अनाजों तथा मटर, टमाटर, चौलाई, कुम्हाड़ा, गोभी, आलू इत्यादि फल तरकारियों तथा मूंगफली, किशमिश इत्यादि में प्राप्त हो सकता है। गन्ने का रस, गुड़ और शीरा विटामिन बी के लिए उत्कृष्ट ही नहीं प्रत्युत लोहा, कैल्शियम और अन्य खनिज पदार्थों के लिए भी उत्तम है। विटामिन सी 0 इसके अल्पाभाव से कब्ज होती है और तोंद बाहर निकल आती है, पैर टेढ़े हो जाते हैं, शक्तिहीनता और बेचैनी बढ़ती है, दांतों में क्षय की प्रवृत्ति होती है। इसके विशेष अभाव से अंग ऐंठ जाते हैं, सीना छोटा हो जाता है, मेरुदंड वक्र हो जाता है, बाढ़ रुक जाती है, हड्डियां मुलायम पड़ जाती हैं, शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाती है। यह विटामिन अधिकांश अन्नों, तरकारियों और फलों में नहीं होता। यह मक्खन, दूध, घी इत्यादि चिकनाई वाले पदार्थों में रहता है। सूर्य किरणों का शरीर की त्वचा द्वारा सेवन करने से भी यह प्राप्त हो सकता है। विटामिन ई 0 इसका प्रभाव स्त्रियों पर बड़ा दूषित पड़ता है। इसके अभाव में गर्भावस्था में गड़बड़ी, बंध्यत्व, क्लीवता, यौन प्रवृत्ति की कमी तथा मानसिक शक्ति की कमी होती है। इसे प्राप्त करने के लिए गेहूं के अंकुर की सबसे अधिक आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त सलाद, पालक, चीनी, गुड़, दूध इत्यादि आवश्यक है। जब आप उपर्युक्त किसी रोग से आक्रांत हों तो अपने आहार का सावधानी से परीक्षण कर मालूम कीजिए कि उसमें किसी विशेष विटामिन की न्यूनता है। जिन शाक तरकारियों अथवा फलों में वह पाया जाता है उन्हें खुराक में सम्मिलित कर संतुलित आहार लिया कीजिए। पके भोजन के साथ हरे सलादों, अदरक, मूली, हरी मिर्च, नींबू, टमाटर इत्यादि का मिश्रण का एक प्लेट आश्चर्यजनक गुण देने वाला है। इसी प्रकार मट्ठा, दही और दूध का आवश्यकता अनुसार अवश्य सेवन किया करें। जल का क्रम दिन में 2.5 सेर जितना सुव्यवस्थित होगा उतना ही शरीर शोधन होता रहेगा। 15. ये चीजें अधिक न खाएं। स्वाद किसी विशेष भोजन के चुनाव की उचित कसौटी नहीं है, अतः रसेंद्रिय आपको भारी संकटों में डाल सकती है। उदाहरणार्थ मीठी चीजों के खाने में अति सावधानी की आवश्यकता है। हलवा, जलेबी, मिठाइयां जो मैदा से बनती हैं, नाश्ते में लेने की आदत न डालें। मिठाइयां आगे चलकर बहुमूत्र और मधुमेह उत्पन्न करती हैं। मिठाई में काम आने वाली सफेद चीनी विषतुल्य है। बच्चों के लिए बाजार में बिकने वाली लाल हरी चॉकलेट की गोलियां, बिस्कुट, मिठाई, शक्कर के नाना आकर्षक पदार्थ हानिकर हैं। मीठी चीजों के प्रति विशेष प्रवृत्ति यह दिखलाती है कि आहार में प्राकृतिक लवण की कमी है। बाजार की तली भुनी चटपटी चीजें जो बहुत दिनों की बासी होती हैं, मक्खियों के झुंड जिन पर मडराया करते हैं, कदापि न लें। पूरी कचौरी खाना पेट की अनेक बीमारियों को आमंत्रित करना है। महात्मा गांधी जी के अनुसार खीर, रबड़ी, श्रीखंड, पेड़े, बर्फी, जलेबी इत्यादि स्वास्थ्य की दृष्टि से शून्य हैं। मादक द्रव्यों का परित्याग करें। मादक द्रव्य साक्षात विषतुल्य हैं। शराब, तंबाकू, गांजा, भांग, चरस, अफीम, चाय, कॉफी इत्यादि विषैले पदार्थ हैं। तंबाकू और चाय आज के फैशन में सम्मिलित हो गए हैं। आधा सेर तंबाकू में जितना विष होता है, उसका पूरा प्रभाव मनुष्य पर हो सके तो 300 व्यक्ति मर सकते हैं। एक सिगरेट से 2 व्यक्तियों की मृत्यु संभव है। तंबाकू का रस खेती को हानि पहुंचाने वाले कीड़ों को मारने के काम आता है। उसके तेल की एक बूंद से काला नाग फौरन मर जाता है। यदि सिगरेट को खोलकर उसकी पुलटिस को बांध ले तो धीरे धीरे विष अपना प्रभाव करने लगता है। अतः निरोग मनुष्य को इनमें से कोई विषैला पदार्थ नहीं खाना चाहिए। सिगरेट सर्वथा त्याज्य है। यह एक क्षणिक उत्तेजक पदार्थ है जो काम वासना को उद्दीप्त करता है, विवेक को नष्ट करता है और झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार की ओर आकृष्ट करता है। रूस के ऋषि टॉल्स्टॉय ने लिखा है कि एक व्यक्ति ने सिगरेट पीकर अपनी स्त्री की हत्या तक कर डाली। टॉल्स्टॉय की राय है कि वास्तव में सिगरेट शराब से भी बढ़कर नशा है। कितने ही सिगरेट के कारण दरिद्र बन रहे हैं। इससे पाचन शक्ति निर्बल पड़ जाती है, भोजन का स्वाद नष्ट हो जाता है, दांत और ओठ काले और बदसूरत बन जाते हैं, मुंह से सर्वदा दुर्गंध निकलती है। आहार से पूरा लाभ उठाने और रक्त को निर्विकार रखने हेतु सिगरेट, बीड़ी, हुक्का और चाय इत्यादि नशीली चीजें छोड़ना आवश्यक है। ये नशे हमारे धन को ही नष्ट नहीं करते, प्रत्युत लोक परलोक दोनों को बिगाड़ते हैं। इसी प्रकार हींग, गर्म मसाला, मिर्च, लहसुन आदि कामोत्तेजक, क्रोध बढ़ाने वाले गर्म पदार्थों से तथा मांस, मछली, अंडा इत्यादि अभक्ष्य पदार्थों से बचते रहें। इनका पूरी तरह त्यागना बन पड़े तो जितना कम हो सके करना उचित है। 16. अच्छी पाचन शक्ति का रहस्य। भोजन करना भी एक कला है। मुंह पाचन का एक आवश्यक अंग है, जैसे आमाशय एवं इंद्रियां। मुंह के 2 बड़े कार्य हैं, एक खुराक को खूब चबाना और पाचन के लिए दूध जैसा पेय बना देना। टूबलार या थूक द्वारा ठोस खाद्यों को तर कर देना। पिसकर ही खुराक शरीर का एक अंश बन सकती है। यदि भोजन मोटा रहेगा तो दांत का कार्य आमाशय तथा अंतड़ियों को करना पड़ेगा और पाचन क्रिया में खराबी आ जाएगी। लार या थूक मेल का काम देता है, जिससे खुराक हल्की होकर नीचे उतरती है। अतः अच्छे पाचन के लिए हमें कड़े पदार्थ को खूब महीन पीसकर पर्याप्त लार या थूक मिश्रित कर देनी चाहिए। नर्म चीजें भी चबाई जाएं, धीरे धीरे मुंह में काफी देर रखकर जायके से खाई जाएं। हलवा, खीर, दलिया, दूध इत्यादि को भी चबाने की आवश्यकता है। अच्छी तरह चबाने का तात्पर्य है पाचन का आधा काम कर लेना। यदि भोजन को खूब चबाकर खाने की आदत डाली जाए तो वह स्वास्थ्य रक्षा में निश्चय ही सहायक होगा। जिन आहारों में मैदा होती है, यदि उन्हें खूब चबाकर खाया जाए और पर्याप्त लार मिला दी जाए तो वे भी हजम हो जाते हैं। आलू, अरबी और जिमीकंद की बाबत यह बात 16 आने ठीक है। जहां पाचन क्रिया बहुत अच्छी तरह होती है, वहां मल बहुत थोड़ा उत्पन्न होता है। इंद्रियों के अंदर सड़ने वाली गंदगी बहुत कम पैदा होती है। कब्ज और पेचिश होने का कम भय रहता है। चबाकर ग्रास निगलें। 17. आपकी खुराक क्या हो। नीचे की तालिका के अनुसार भोजन सामग्री की व्यवस्था करना बहुत उपयोगी है, ऐसा भोजन विशेषज्ञों का मत है। पाठकों को इससे लाभ उठाना चाहिए। 1. घर के अंदर काम करने वालों के लिए सस्ती खुराक अनाज, गेहूं, चावल, मक्का इत्यादि 10 ऑन्स, दालें 3 ऑन्स, पत्ते वाली सब्जी किसी प्रकार की और सस्ती 3 ऑन्स, देसी तोरई, अरबी, बैंगन इत्यादि 6 ऑन्स, तेल खाने वाला 2 ऑन्स, भुने हुए चने 2 ऑन्स, गुड़ 2 ऑन्स, फल यदि सस्ते हों 4 ऑन्स, छाछ 8 ऑन्स। इसमें फल शामिल नहीं है, इसलिए चौथे दिन एक पाव फल खाए जाएं। घर के अंदर काम करने वालों के लिए बीच की खुराक अनाज, गेहूं, चावल, मक्की इत्यादि 12 ऑन्स, दालें, चना इत्यादि 3 ऑन्स, सब्जी हर प्रकार के साग और करमकल्ला इत्यादि 3 ऑन्स, तरकारियां आलू, परवल, गोभी, भिंडी, टमाटर, गाजर, चुकंदर, शलजम इत्यादि 6 ऑन्स, तेल खाने वाला 1 ऑन्स, घी 1 ऑन्स, फल केले, आम, पपीते, अमरूद, खरबूजा आदि 4 ऑन्स, गुड़ 3 ऑन्स, दूध 12 ऑन्स। किसानों के वास्ते सस्ती खुराक अनाज, गेहूं, चावल, मक्की 12 ऑन्स, मोटा अनाज, ज्वार, बाजरा इत्यादि 4 ऑन्स, दालें, मंग, चना, अरहर इत्यादि 2 ऑन्स, भुना हुआ चना या चने के इनकुए, नाश्ते में सब्जी, लाल साग, बथुआ, चने का साग जो जाड़ों में कच्चा खाया जाता है, फोरॉन्स, तरकारी, बैंगन, कद्दू, लौकी, भिंडी, अरबी, आलू जब सस्ते हों, सिक्सॉन्स, तेल खाने वाला आमतौर पर सरसों का तेल खाया जाता है, लेकिन तिली या महुए का तेल खाने में कोई हानि नहीं, वन ऑन्स, फल ककड़ी, खरबूजा, अमरूद, जामुन, आम,